पृष्ठ संख्या 49, अध्याय 4, स्वराज पार्टी। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन बंद करने पर देश की जनता और राष्ट्रीय नेताओं की कड़ी आलोचना गांधी को झेलनी पड़ी। मार्च 1922 ईस्वी में गांधी की गिरफ्तारी से जनता में निराशा बढ़ने लगी। ऐसे में देश की जनता में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उत्साह बनाए रखना आवश्यक था और किसी सक्रिय कार्यक्रम को भी शुरू करने की जरूरत थी। भविष्य का मार्ग निर्देशित करने के लिए एक असहयोग समिति, सत्याग्रह समिति का गठन किया गया। समिति के लोगों ने देश भर का भ्रमण किया और जनता की भावनाओं को जानने का प्रयास किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के साथ साथ काउंसिल में प्रवेश करने की भी सिफारिश की। कांग्रेस का गया अधिवेशन। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे। इन्होंने अपने भाषण में काउंसिल में प्रवेश करने तथा चुनावों में भाग लेने का अनुरोध किया। चितरंजन दास ने कहा, हम शेर को उसकी मांद में जाकर ही पराजित करेंगे, उनके व्यय बजट को अस्वीकृत कर देंगे, निंदा का प्रस्ताव पारित करेंगे और सरकारी तंत्र का चलना असंभव कर देंगे। राजगोपालाचारी ने चितरंजन दास के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। इन्होंने प्रस्ताव पर मतदान करने का सुझाव दिया। मतदान हुआ और परिवर्तन विरोधियों की विजय हुई। इस पर चितरंजन दास ने अधिवेशन के सभापति पद से त्यागपत्र दे दिया। पृष्ठ संख्या 50। काउंसिल प्रवेश को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया। कांग्रेस में विचारधारा के आधार पर दो गुट बन गए, परिवर्तनवादी प्रो चेंजर्स और दूसरा परिवर्तन विरोधी नो चेंजर्स। परिवर्तनवादी दल का नेतृत्व चितरंजन दास कर रहे थे। अन्य प्रमुख नेतागण थे मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान इत्यादि। परिवर्तन विरोधी दल के सदस्य थे राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी तथा एस कस्तूरी रंगायर आदि। परिवर्तनवादी नेताओं का विचार था कि विधानसभाओं में प्रवेश कर सरकार की मनमानी को रोका जाए। चितरंजन दास ने कहा कि कांग्रेस का यह कर्तव्य है कि वह परिषदों में शामिल होकर अंदर से उनका विरोध ज़्यादा प्रभावशाली बहिष्कार करे। परिवर्तन विरोधियों ने इसका जोरदार विरोध किया। फलस्वरूप चितरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस से भी पवित्र एक वस्तु है और वह वस्तु है भारतीयों की स्वतंत्रता। स्वराज पार्टी के निर्माण के कारण। स्वराज दल के निर्माण के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, असहयोग आंदोलन के बंद होने तथा महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने पर राष्ट्रीय आंदोलन की गति एकदम मंद हो गई। इस समय देश की जनता को फिर से सक्रिय करने की जरूरत थी। दूसरा, स्वराज प्राप्ति के लिए केवल रचनात्मक कार्य ही पर्याप्त न था। तीसरा, असहयोग आंदोलन को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना हुई थी। आंदोलन को स्थगित होने से देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। मोहम्मद अली ने असहयोग आंदोलन के समय तो गांधी जी का साथ दिया था, किंतु 1925 में असहयोग की नीति को छोड़कर सांप्रदायिक नीति को अपना लिया। जनता को सांप्रदायिक की ओर से जाने से रोकने के लिए सक्रिय निर्देशन की आवश्यकता थी। चौथा, सरकार ने असहयोग आंदोलन को कठोरता से दबा दिया। सरकार विरोधी तत्वों को चुन चुन कर समाप्त किया जा रहा था। अतः कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने काउंसिल में प्रवेश करने की मांग को उचित ठहराया, ताकि वहां से सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाई जा सके। पांचवा, असहयोग आंदोलन के अचानक बंद कर देने से राष्ट्रीय नेताओं एवं जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बंगाल में चितरंजन दास तथा उत्तर भारत में मोतीलाल नेहरू और दक्षिण में एनसी केलकर ने गांधी जी की नीति के विरुद्ध आवाज उठाई। पृष्ठ संख्या 51। स्वराज पार्टी की स्थापना। 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। दल के प्रचार प्रसार के लिए नेताओं ने देश का भ्रमण करना शुरू किया। चित्तरंजन दास ने मद्रास में भाषण देते हुए कहा, क्या मैं विद्रोही हूँ? हाँ, मैं कांग्रेस या अन्य किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह अवश्य करूँगा, यदि मुझे यह मालूम हो जाए कि स्वराज प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक है। मैं स्वराज चाहता हूँ, मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, मैं जीवन भर कभी कायर नहीं रहा हूँ, मैं अपना जीवन बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा स्वराज दल के बीच एक समझौता हुआ। स्वराज दल के सदस्य यह प्रस्ताव पास कराने में सफल हो गए कि कांग्रेस के सदस्य आगामी नवंबर मास में होने वाले निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस के सदस्य जिन्हें काउंसिलों में प्रवेश करने के विरुद्ध किसी प्रकार की धार्मिक तथा नैतिक आपत्ति न हो, आगामी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं तथा वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। स्वराज पार्टी और महात्मा गांधी। 5 फरवरी 1924 को गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया क्योंकि उनका स्वास्थ्य तेजी से खराब हो रहा था। गांधी की अनुमति पाने के ध्येय से स्वराजवादियों ने उनसे मुलाकात की। गांधी स्वराजवादियों की नीतियों एवं कार्यक्रमों के विरोधी थे। इतना आवश्यक था कि गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वराजवादियों के कार्यक्रमों का विरोध नहीं किया क्योंकि उनका विश्वास था कि सार्वजनिक रूप से विरोध करने से इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। गांधी ने स्वराजवादियों से कहा, हमारे बीच में वास्तविक और मौलिक भेद है। मेरी अब भी यही राय है कि परिषदों में सम्मिलित होना और असहयोग, जैसा कि मैं समझता हूँ, साथ साथ नहीं चल सकता। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसा प्रतीत होने लगा कि एक बार पुनः कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा। सरकार तो कांग्रेस में फूट डालना चाहती ही थी। पृष्ठ संख्या 52। 6 जून 1924 को वायसराय ने भारतीय गृह सचिव को लिखा, स्वराजियों और गांधी में अलगाव की संभावना बढ़ती जा रही है। स्वराजी इस समय कांग्रेस पर गांधी जी के नियंत्रण को तोड़ने में जी जान से लगे हुए हैं। गांधी ने अंग्रेजों की कुटिल चालों को समझा और स्वराजवादियों के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। गांधी अभी इस हालत में नहीं थे कि आंदोलन को पुनः चला सके क्योंकि जनता और राष्ट्रीय आंदोलन के नेतागणों का गुस्सा असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने पर ठंडा नहीं हुआ था। कांग्रेस ने स्वराज दल को काउंसिल प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इस पर गांधी ने कहा, मैं स्वराजवादियों के मार्ग में अवरोध अथवा उनके विरुद्ध प्रचार में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं ऐसी योजना को सक्रिय सहायता नहीं कर सकता जिसमें मुझे स्वयं विश्वास नहीं हो। किंतु धीरे धीरे गांधी के विचारों में बदलाव आने लगा। स्वराजवादियों ने विधानसभाओं में जिस धौर्य, साहस और आक्रामक विचारों को अपनाया, उससे गांधी प्रभावित हुए और उन्होंने यह अनुभव किया कि भले ही स्वराजवादियों की रणनीति तथा कार्यक्रम गलत हों, किंतु वे ब्रिटिश शासन के सहयोगी नहीं बन सकते। स्वराजवादी तो विधानसभाओं में प्रवेश कर चुके थे, ऐसे समय में सक्रिय विरोध किया जाना उचित नहीं होगा। जनता पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा ब्रिटिश सरकार भी इस विरोध का फायदा उठाएगी। गांधी ने यंग इंडिया में लिखा, अगर मैं ज़रूरत की इस घड़ी में स्वराजियों का साथ नहीं देता हूँ तो यह देश के साथ धोखा होगा, मुझे उनका साथ देना ही चाहिए। हालांकि मैं विधानमंडलों में हिस्सेदारी और संसदीय संघर्ष की नीतियों में विश्वास नहीं करता, उनकी नीतियों का विरोधी होने के बावजूद मुझे न केवल उनके साथ मिलकर काम करना है बल्कि उन्हें और मजबूत बनाना है। 7 नवंबर 1924 को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी ने सम्मिलित रूप से एक प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें कहा गया, स्वराजवादी कांग्रेस के नेतृत्व में हुए विधानसभाओं में काम करेंगे। साथ ही स्वराजवादी ने गांधी के रचनात्मक कार्यों को भी स्वीकार किया। दिसंबर 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। स्वराज पार्टी का उद्देश्य एवं कार्यक्रम। 1923 ईस्वी में स्वराजवादियों का चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। घोषणा पत्र में कहा गया था, भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का मकसद इंग्लैंड के स्वार्थी हितों की पूर्ति करना है। पृष्ठ संख्या 53 और तथाकथित सुधारवादी कानून विदेशी हुकूमत के शोषण को और बल प्रदान करते हैं। अंग्रेजों का असली मकसद भारत के असीमित संसाधनों का शोषण करना और भारतीय जनता को ब्रिटेन का ताबेदार बनाकर रखना है। घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया था कि स्वराजवादी विधानसभाओं में प्रवेश कर सरकार के झूठे वायदों का पर्दाफाश करेंगे। स्वराज दल के उद्देश्य एवं कार्यक्रम निम्नलिखित थे। पहला, सरकार के साथ असहयोग करके सरकार के कार्यों में बाधा तथा विलंब करना। दूसरा, उन परंपराओं का अंत करना जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारत में मौजूद था। चित्तरंजन दास ने कहा कि हमारा नारा है नष्ट करो। हम नष्ट क्यों करना चाहते हैं? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? हम उस परिपाटी को नष्ट करना या उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है और न हो सकती है। हम इसे इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम ऐसी पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं जो सफलतापूर्वक कार्य कर सके और सार्वजनिक हितों में सहायता पहुंचाए। तीसरा, स्वराज की प्राप्ति। चौथा, उन सभी व्यवस्थाओं को समाप्त करना जो अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान थी। पांचवा, सरकार की भारत विरोधी नीतियों का घोर विरोध करना, उसके कार्य में अड़ंगा डालना। छठा, सदस्य विधानमंडलों में सरकारी आय व्यय के बजटों को भी रद्द कराने का भरसक प्रयत्न करें जिससे सरकारी मशीनरी ठप हो जाए। सातवां, विधानसभाओं में चुने जाने के बाद सदस्य उन सभी प्रशासकीय शक्तियों को प्राप्त करने का पुनः प्रयत्न करेंगे जो काउंसिल के सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। ऐसा करने के बाद ही सदस्य कोई भी कार्य प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। आठवां, स्वराज दल ने अपने कार्यक्रम में यह भी शामिल किया कि काउंसिलों में उनके सदस्य ऐसे प्रस्तावों, विधेयकों और योजनाओं को प्रस्तुत करें और उसे पास करवाने का प्रयत्न करें जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय गति प्राप्त हो। पृष्ठ संख्या 54। नवा, दल के सदस्य ब्रिटिश सरकार के दोषों को जनता तक पहुंचाएं जिससे सरकार के झूठे आश्वासनों का पता चल सके। दसवां, स्वराज दल के सदस्य यह चाहते थे कि सरकार के पिछलग्गुओं को चुनाव में सफल होने से रोका जाए। 11वां, सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना या उन प्रस्तावों को अस्वीकार करना जिनके द्वारा नौकरशाही शक्तिशाली होती हो। 12वां, स्वराजवादियों ने यह भी घोषणा की कि जैसे ही उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि सत्याग्रह करना अनिवार्य है और उसके बिना नौकरशाही सही रास्ते पर नहीं आएगी तो वे शीघ्र ही काउंसिलों से त्यागपत्र दे देंगे और हर प्रकार से सत्याग्रह के लिए अपनी समस्त शक्ति गांधी जी के नेतृत्व में लगा देंगे। स्वराज पार्टी के कार्य और सफलता। स्वराजवादियों ने अपने व्यापक कार्यक्रम के साथ कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर 1923 का चुनाव लड़ा जिसमें उन्हें आशा के अनुरूप सफलता मिली। बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा मुंबई में उन्हें अच्छी सफलता मिली। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। बंगाल में तो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। मद्रास और पंजाब में इन्हें खास सफलता नहीं मिली क्योंकि वहाँ सांप्रदायिकता और जातिवाद प्रभावी था। केंद्रीय विधानमंडलों की निर्वाचित 101 सीटों में 42 पर इन्हें सफलता मिली। इन्होंने केंद्रीय विधानमंडलों में साझा मोर्चा गठित किया। मौलाना आज़ाद ने कहा कि दल की सबसे बड़ी जीत यह थी कि जो स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखे थे उन पर भी कब्जा कर लिया। स्वराजवादी दल ने अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। मोतीलाल नेहरू भारत की विधानसभा में स्वराज पार्टी के नेता थे। 8 फरवरी 1924 में इन्होंने असेंबली में प्रस्ताव पेश किया। यह परिषद गवर्नर जनरल से आग्रह करती है कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से भारत शासन अधिनियम में देश में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए संशोधन किए जाएं तथा इसके लिए पहला, भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाए जो देश के महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक संविधान निर्मित करे। दूसरा, वर्तमान व्यवस्थापिका सभाओं को भंग करके नव निर्मित व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख यह योजना प्रस्तुत की जाए तथा उसे बाद में ब्रिटिश संसद को कानून के लिए प्रेरित किया जाए। पृष्ठ संख्या 55। सरकार के विरोध करने के बावजूद यह प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने जो जवाब दिया उससे स्वराजवादी संतुष्ट नहीं हुए, फलस्वरूप स्वराजवादी वित्त विधेयकों को पारित नहीं होने दिया गया। इसके लिए गवर्नर जनरल को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा। पारित संशोधन अधिनियम की मांग का एक प्रभाव यह हुआ कि सरकार ने 1919 के सुधारों की जांच के लिए गृह सदस्य अलेक्जेंडर मुद्दीमैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इसका उद्देश्य द्वैत शासन के कार्य का निरीक्षण करना था। मोतीलाल नेहरू को इस समिति का सदस्य बनाया गया किंतु इन्होंने सदस्य बनने से मना कर दिया। तेज बहादुर अश्रू तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने इस समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली। स्वराजवादियों ने मुद्दीमैन समिति तथा इसके द्वारा की गई जांच का विरोध किया क्योंकि समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी। 1925 ईस्वी में सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकृत कराने के लिए काउंसिल में प्रस्तुत किया। मोतीलाल नेहरू के द्वैत शासन की कड़ी आलोचना की तथा इसे अव्यवहारिक बताया। इसके साथ ही सरकार के प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव रखा जो भारी बहुमत से पास हो गया। यह संशोधन उनके 1924 के प्रस्ताव से कुछ मिलता जुलता था। स्वराज दल ने 1925-26 1926-27 के बजट का भी विरोध किया तथा इसे विधानमंडल में अस्वीकृत करवाता रहा। गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकार से ही इसे पारित किया। इसके अलावा सी डी अयंगर ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में एक प्रस्ताव द्वारा बंगाल के दमनकारी अध्यादेशों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। इनका प्रस्ताव स्वीकार किया गया। फरवरी 1925 में विट्ठल भाई पटेल ने भी बहुत से दमनकारी कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। सरकार ने बहुत से कानूनों के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकार किया। भारत में अभी तक के एक भी सैनिक स्कूल की स्थापना नहीं की गई थी। स्वराज दल ने भारत में एक सैनिक विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया। सरकार के विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया। स्वराजवादियों ने अपने कार्यकाल के दौरान जब कभी यह अनुभव किया कि उनकी बातों की उपेक्षा की जा रही है तो सरकार के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने कई बार विधानसभाओं का बहिष्कार भी किया। पृष्ठ संख्या 56। चिंतामणि ने इस संबंध में कहा कि मार्च 1926 में विधानमंडल की समाप्ति तक के बीच यह एक आम दृश्य था कि कांग्रेसी स्वराजवादी व्यवस्थापिका सभाओं में आते थे और तुरंत ही बाहर चले जाते थे। प्रांतों में भी स्वराज दल को कुछ सफलता मिली। मध्य प्रांत में स्वराज दल का स्पष्ट बहुमत था, अतः यहाँ पर स्वराजवादियों ने द्वैत शासन को अव्यवहारिक सिद्ध कर दिया। स्वराजवादियों ने जहाँ एक ओर गवर्नर के मंत्रिपरिषद बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वहीं दूसरी ओर लगातार तीन मंत्रिमंडलों को धराशायी करने में सफलता प्राप्त की। 1925 ईस्वी में देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु हो जाने के बाद स्वराजवाद को बहुत गहरा आघात पहुंचा और धीरे धीरे यह कमजोर पड़ने लगा। स्वराज पार्टी की नीति में परिवर्तन। जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रारंभ में स्वराजवादियों ने सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई और सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगाया, किंतु यह नीति बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल सकी और इसमें परिवर्तन आने लगा। सुभाष चंद्र बोस ने भी लिखा है कि 1925 के मध्य से ही स्वराज दल की मूल अवरोध की नीति में क्रमिक परिवर्तन होता गया। चित्तरंजन दास भी यह महसूस करने लगे थे कि असहयोग की नीति अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। अतः स्वराजवादियों ने असहयोग के स्थान पर उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति अपनानी शुरू कर दी। 2 मई 1925 ईस्वी में फरीदपुर के प्रांतीय सम्मेलन में देशबंधु चित्तरंजन दास ने सरकार को आश्वासन दिया था कि यदि सरकार निम्नलिखित बातें मानने को तैयार है तो हम सहयोग की नीति को अपना लेंगे। पहला, सरकार मन से जनता के प्रतिनिधियों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे। दूसरा, सरकार यह घोषणा करे कि निकट भविष्य में भारत को स्वराज दिया जाएगा। तीसरा, सरकारी अधिकारी अपने हृदय परिवर्तन तथा शांतिपूर्ण समझौते का वातावरण बनाने का प्रयास करें। चौथा, सभी राजनीतिक बंदियों को क्षमा करें। 16 जून 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात मोतीलाल नेहरू ने दल का नेतृत्व किया। अब स्वराजवादियों ने खुलकर सहयोग की नीति को अपना लिया। दल में कुछ ऐसे भी सदस्य थे जो अभी भी सरकार के साथ बाधा उपस्थित करने की नीति को कायम रखना चाहते थे। इससे स्वराज दल में फूट दिखाई पड़ने लगी। सरकार स्वराज दल को कमज़ोर बनाना चाहती थी, अतः उसने मौके का फायदा उठाकर और सहयोगवादियों को विभिन्न समितियों में सदस्य बनाने लगी। 1924 ईस्वी में इस्पात सुरक्षा समिति में कुछ लोगों को स्थान दिया गया। 1925 में मोतीलाल नेहरू अस्किन समिति में शामिल हुए। इस समिति का उद्देश्य भारतीय कैडेटों की किंग्स कमीशन की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के संबंध में विचार विमर्श करना था। अगस्त 1925 में विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष चुने गए। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एस वी टाम्बे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल हुए। मोतीलाल नेहरू पूर्ण रूप से खुलकर सरकार के साथ सहयोग को नहीं अपनाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए अपने सहयोगियों को फटकारा। मोतीलाल नेहरू ने जब यह देखा कि उनके फटकारने का कोई प्रभाव उनके सहयोगियों पर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सहयोगियों के साथ एक समझौता किया। यह समझौता साबरमती समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते के समय श्रीमती सरोजनी नायडू, केलकर, MS अने, डॉक्टर मंजू तथा लाला लाजपत राय ने भाग लिया। इस अवसर पर महात्मा गांधी भी मौजूद थे। समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि यदि सरकार प्रांतों में मंत्रियों के हाथ में उत्तरदायित्व तो सौंपने को तैयार हो तो उससे सहयोग किया जा सकता है। इस प्रकार सहयोगी सदस्य मंत्रिमंडल तथा सरकार की अनेक समितियों में प्रवेश करके सरकार से लाभ उठाने लगे। जब कांग्रेस ने पुनः सरकार से असहयोग की नीति को अपनाया, तब सहयोगी सदस्य केलकर, जयकारा तथा डॉक्टर मुंजे आदि कांग्रेस से अलग हो गए। स्वराज पार्टी का ह्रास। स्वराज दल के ह्रास के निम्नलिखित कारण थे। पहला, देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने से स्वराज दल को गहरा आघात लगा, क्योंकि चित्तरंजन दास स्वराज दल के जन्मदाता थे। बंगाल जो स्वराज दल का गढ़ था, उनकी मृत्यु से दल की शक्ति कमजोर हो गई। पृष्ठ संख्या 58। दूसरा, दल की नीति में परिवर्तन। स्वराज दल ने प्रारंभ में सरकार के साथ असहयोग की नीति को अपनाया तथा सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाई, किंतु जब उन्होंने देखा कि सरकार के साथ असहयोग की नीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है, तो वे सहयोग की नीति अपनाने लगे। भारत की जनता चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाए। तीसरा, 1926 का निर्वाचन। सन 1926 के काउंसिल के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें स्वराजवादियों को सन 1923 की अपेक्षा बहुत कम सफलता मिली। इससे इनका प्रभाव कम होने लगा। चौथा, हिंदू मुस्लिम दंगे। खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित हुई थी। यह ब्रिटिश सरकार के लिए असहाय था, अतः सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता का माहौल उपस्थित करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दंगे फसाद शुरू हो गए। दंगे के कारण स्वराज दल की एकता पर भी प्रभाव पड़ा। पांचवा, स्वराज दल में विभाजन। देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल में स्पष्ट विभाजन हो गया। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाला दल सरकार के साथ असहयोग करना चाहता था, जबकि दूसरी ओर मुंबई के स्वराजवादी सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे। छठा, कांग्रेस में एक नए दल की स्थापना। मदन मोहन मालवीय तथा लाला लाजपत राय ने हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में एक नए दल की स्थापना की। इनका ऐसा विश्वास था कि सरकार के साथ अड़ंगा की नीति अपनाने से हिंदुओं को बहुत हानि होगी, इससे स्वराज दल और भी कमजोर हो गया। सातवां, अड़ंगा की नीति का असफल होना। स्वराज दल ने ब्रिटिश सरकार के प्रति जो अड़ंगे की नीति अपनाई, उसका कोई विशेष लाभ नहीं हो सका और न ही इससे स्वराज प्राप्ति का सपना साकार हो सका। इन्होंने जब कभी अड़ंगा की नीति अपनाई, गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर इन्हें शांत कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, अड़ंगा नीति बेकार तथा अर्थशून्य है। इससे सरकार तो कमजोर नहीं होगी, वरन लगातार अड़ंगा लगाने से नौकरशाही अपनी स्थिति पहले से भी दृढ़ कर लेगी। अड़ंगाकारी अल्पकाल के लिए तो अपने को निरंकुश शासन का विरोध करने वाला शूरवीर समझ ले, परंतु उसके बाद जनता को उसके कार्यों का फल भुगतना पड़ेगा। पृष्ठ संख्या 59। बिना ऐसे दल के जिसका क्रांतिकारी दृष्टिकोण न हो, काउंसिल को तोड़ने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। आठवां, गांधी जी का बढ़ता प्रभाव। एक ओर स्वराज दल का ह्रास होता गया तो दूसरी ओर गांधी का पुनः प्रभाव बढ़ने लगा। गांधी जी ने 1924 ईस्वी में जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस को रचनात्मक कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे जनता पुनः गांधी जी के साथ जुड़ने लगी, क्योंकि स्वराज दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा। स्वराज पार्टी का महत्व। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज दल के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। दल ने उस समय राष्ट्र का नेतृत्व किया जब असहयोग के स्थगित हो जाने से देश में अनिश्चितता बनी हुई थी। उस समय कांग्रेस में सत्याग्रह चलाने की शक्ति नहीं थी, जनता निराश हो चुकी थी। स्वराजवादियों ने जनता में राष्ट्रीय आंदोलन की ज्योति को जलाए रखा। इन्होंने काउंसिल के अंदर राष्ट्रीय हितों के लिए दृढ़ता से संघर्ष किया। सरकार पर जनता की मांगे स्वीकार कराने के लिए सराहनीय कार्य किया, साथ ही सरकार की निरंकुशता की लगातार कड़ी आलोचना की। इनके प्रभाव से ही कुछ उपयोगी कानून बने। स्वराजवादियों के प्रभाव से ही 1919 के अधिनियम में सुधार हुआ। समय से पूर्व साइमन कमीशन की नियुक्ति भी स्वराजवादियों के मांगों के कारण ही संभव हुई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मांग भी सबसे पहले स्वराज दल ने ही की थी। द्वैत शासन के दोषों को स्वराजवादियों ने सफलता के साथ उजागर किया। रजनी पाम दत्त ने स्वराजवादियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस के नपुंसक और दकियानुषी नेताओं ने स्वराज आंदोलन का विरोध किया, जो कांग्रेस के अंदर अपरिवर्तन माने जाते थे, जो गांधी के चरखा, शराबबंदी, अछूतोद्धार तथा समाज सुधारों के इस तरह के अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता समझते थे। परंतु इन लोगों में कांग्रेस के उस वर्ग को रोकने की शक्ति नहीं थी जो अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी नीति को अपनाना चाहता था। सन 1925 तक कांग्रेस में स्वराज पार्टी का बहुमत हो गया था और इसके नेताओं ने कांग्रेस का नियंत्रण निर्णायक रूप से अपने हाथों में ले लिया था। इसके फलस्वरूप ही गांधी को थोड़े समय के लिए पृष्ठभूमि में जाना पड़ा। पृष्ठ संख्या 60। साइमन कमीशन ने स्वीकार किया कि स्वराज दल सुसंगठित और अनुशासित दल था, जिसके पास एक निश्चित कार्यक्रम था बर्किनहेड ने स्वराज दल को भारत का सबसे सुसंगठित दल माना। ब्रेल्सफोर्ड ने स्वराज दल के बारे में लिखा है, मेरे विचार से अड़ंगा लगाने की नीति उचित ही थी, क्योंकि उसने ब्रिटिश अनुदार दल को इस बात से कायल कर दिया है कि द्वैत शासन प्रणाली अव्यवहारिक थी। आरसी मजुमदार ने कहा, पहली बार विधानसभाओं ने वास्तविक राष्ट्रीय सभाओं का रूप धारण किया, जहां राष्ट्रीय शिकायतें खुलकर व्यक्त की गईं और निसंकोच रूप से राष्ट्रीय उद्देश्य तथा आकांक्षाएं प्रकट की गईं और झूठे विधानमंडलों द्वारा अंग्रेजी शासन के वास्तविक चरित्र को निर्दयतापूर्वक उछाला गया। अब अंग्रेजी तानाशाही और भारतीय नौकरशाही अपने स्वेच्छाचार और दमन के नग्न रूप में समस्त संसार के सामने खड़े कर दिए गए थे। स्वराज दल के उद्देश्य तथा आकांक्षाएं बहुत सीमा तक पूर्ण हो गई थी। डॉक्टर जकारिया ने कहा कि स्वराजवादियों की स्थिति ऐसे लोगों के समान थी जो अपनी रोटी खाना और साथ रखना भी चाहते थे। एक तरफ वे लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उग्रता की बातें करते थे तो दूसरी ओर काउंसिल प्रवेश में भी विश्वास करते थे। ऐसी स्थिति में जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया उसमें सहयोग का अर्थ असहयोग था। संदर्भ, पहला, H.D. गुप्ता, बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, C.R. दास, पृष्ठ 88। दूसरा, वही पृष्ठ 85।